धवला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 10। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाहूणं, सिद्धमणंतमणिंदिय मणुव मम पथसोखमणवच्चं, केवल पहोहनिज्य दुन्नयति मिरंजिनम नमः। आचार्य श्री वीर सेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो शरखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें ये जो प्रथम जीव स्थान है, प्रथम खंड के ये सत प्ररूपणा यहाँ चल रही है। दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 529 पर आए, 529 29। अनिवृत्तिकरण की बातें हुई थी, सूक्ष्म सांप्राय से चालू करना है, मिला ना? मिला
लेक्चर?
हाँ, 10 नंबर का है लेक्चर। हाँ, फोन चल रहा था ना उनका। हाँ हाँ, फिर से दोबारा बोलना, क्या बोले आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। ये हमारी जो 20 प्ररूप है ना, जीवकांड का विषय जो था, वो टेबल हमने सॉल्व किए थे, वही विषय यहाँ चल रहा है। पहले हमने सामान्य से सभी जीवों में 20 प्ररूपणा लगाई थी, फिर मार्गणाओं में, देवों में लगाए, तिरियंचों में, देवों में नहीं लगाए, नारकियों में लगाए, तिरियंचों में लगाए, मनुष्यों में, चल रही है बात। तो तिरियंचों की बात याद है क्या? तिरियंचनी के ऊपर लगाएंगे, पर्याप्त तिरियंच योनिमति। मुझे जरा ये माइक देना, माइक इसमें इसमें बताओ। हाँ,
गुणस्थान 1 से 5।
हाँ, गुणस्थान 1 से 5। हाँ,
जीव समास संगीत पंचेंद्रिय योनिमति।
हाँ, योनिमति पर्याप्त के अपर्याप्त,
पर्याप्त दोनों,
दो ही जीव समास है,
असंगी
भी लेना,
चार
लेना। हाँ,
संगी के पर्याप्त अपर्याप्त।
हाँ, संगी पर्याप्त अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, पर्याप्त
पर्याप्ति 10 नहीं 6 6।
हाँ, ये पहली बात पूछ रहे हैं प्रश्न, आप ही अपने मन में सॉल्व करो। तिरियंच योनिमति, उसके ऊपर आलाप चल रहे, सामान्य से हम कह रहे। हाँ, बराबर है, आप
बराबर ना। हाँ, पर्याप्ति 6 6 और 5 5,
6 6 और 5 5।
प्राण 10 10 7।
हाँ,
और 9 9 7।
हाँ, 10 7 और 9 7 प्राण।
ये क्या है? संज्ञा,
संज्ञा
पांचों,
चार होती है,
चार संज्ञा।
तिरियंच योनिमति के आलाप जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने बंद किया, उन्होंने
गति पंच, तिरियंज गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय, काय तरस्काय, योग में चार मनोयोग, चार वचन योग, औदारिक औदारिक मिश्र, कर्मण।
बहुत अच्छा। हाँ,
वेद, स्त्री वेद,
स्त्री वेद। हाँ, क्योंकि बताया ना वेद। हाँ,
कषाय, चारों कषाय, ज्ञान,
अकॉर्डिंग टू ये नहीं अपना हुआ था वो जो रिवीजन के तौर पर पूछ रहे योनिमति तिर्यंच हाँ, हाँ। ज्ञान कौन कौन से हो सकते आपने पांचों गुणस्थान बताए तो सभी हो गए केवल ज्ञान भी मन परे ज्ञान भी होगा
केवल ज्ञान नहीं होगा और मन परे नहीं होगा बाकी सब होगा
क्या सब यानी क्या हो गए
तीन ये तीन
कुज्ञान
कुज्ञान और मति श्रुता अवधि छह ज्ञान संयम असंयम नहीं असंयम और संयम
बहुत संयम असंयम
दर्शन तीन
दर्शन तीन
हाँ द्रव्य और भाव से भव्य अभव्य दोनों एक है सम्यक्त्व
कौन कौन से हो गए
सम्यक्त्व मिथ्यात्व सासादन सम्यक मिथ्यात्व और औपशमिक क्षयक्षम और क्षायिक
होगा क्या तिर्यंच में शायिक समय दर्शन नहीं होगा है ना क्योंकि शायिक तो यहाँ से ले जाने वाले के होता है हाँ फिर
संगी असंगी दोनों
हाँ
आहार अनाहार दोनों
हाँ
साकार अनाकार
बस अभी तो हमारी ये बात है यहाँ हम मनुष्यों में देख रहे हैं और नौ गुणस्थान तक हमने देखा था मनुष्यों में दसवें गुणस्थान पर अभी अपना विषय चलेगा यहाँ पर तो देखो हम पढ़ेंगे एक सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पेज 529 नीचे का पैराग्राफ एक संगी पर्याप्त जीव समाज यहाँ कोई अपर्याप्त नहीं होते छह पर्याप्त या दसो प्राण अब यहाँ तक परिग्रह संज्ञा है इसलिए सूक्ष्म परिग्रह संज्ञा मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय चार मनोयोग चार वचन योग औदारिक काय नव योग अपगत वेदी हो गए अभी है सूक्ष्म लोभ कषाय है कषाय में मात्र एक सूक्ष्म लोभ है आदि के तीन ज्ञान ये किसमें लगा रहे मन परिज्ञान को क्यों नहीं लगाया लिया
मन परिज्ञान
अरे वो तो बारहवें तक होता है ये क्यों नहीं लिया मनुष्य नहीं की बात चल रही है हमने सामान्य मनुष्य के देख लिए पर्याप्त मनुष्यों के तो सामान्य के समान बता दिए मनुष्य नहीं में हाँ तो मन परे ज्ञान नहीं होगा उनमें हाँ इसलिए तीन ही ज्ञान के हैं सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयम आदि के तीन दर्शन द्रव्य से छह लेशाएं और भाव से शुक्ल लेशा क्योंकि श्रेणी में मात्र शुक्ल लेशा होती है भव्य सिद्धि की है औपशमिक और क्षायिक ये दो सम्यक्त्व क्योंकि द्वितीय ऑप्शन भी हो सकते हैं ना मनुष्य नहीं हुए तो द्वितीय ऑप्शन हो सकता है संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है ये मनुष्यनियों में हमने सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान देखा अब आते हैं 530 पेज पर उपशांत कषाय गुणस्थान वर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर एक उपशांत कषाय गुणस्थान एक संगी पर्याप्त जीव समास छह पर्याप्तिया दशो प्राण उपशांत संज्ञा अभी सभी संज्ञाएं उपशमित हो रही गई है उपशांत संज्ञा नहीं है इसको क्षीण संज्ञा नहीं कहा उपशांत संज्ञा कह दिया ये बताने के लिए उनकी क्या पोजीशन है उपशमित है मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति संज्ञा रहित है हाँ ग्यारहवा गुणस्थान है ना बारहवें तेरहवें को हम क्षीण संज्ञा कहेंगे अब ये संज्ञा के नीचे केवल जीरो लिखे तो भी चल जाएगा हाँ यानी संज्ञा रहित ऐसा भी कह सकते हैं हम उसको मनुष्य गति है पंचेंद्रिय जाति है त्रस्त काय यहाँ पर भी नौ योग हो गए चारों मनोयोग चारों वचन योग औदारिक काय योग ये नौ योग हमने देखा ना यहाँ योग भी है और उनका पलटना भी चलता है पूरा गुणस्थान किसी एक योग में हो जाए ये बात नहीं होती अपगत वेद अब कषाय में उपशांत कषाय लिख दिया उपशमित है कषाय आगे के तीन ज्ञान, क्योंकि मनुष्य नहीं के अलग चल रहे, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा श्रेणी है, इसलिए भव्य सिद्धि, औपशमिक और क्षायिक दो सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी होती है। अब क्षीण कषाय गुणस्थान वर्तिनी मनुष्यनियों के आलाप कहने पर, अब कुछ देख रहे, पहले का कुछ लगा ना है, पहले का कुछ लगा ना है, रिवीजन है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्षीण कषाय की बात कर रहे हैं। एक क्षीण कषाय गुणस्थान, संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण। अब यहाँ क्षीण संज्ञा कह दिया, ऊपर उपशांत संज्ञा, पर्याप्तिया है ना, पर्याप्तया का वो ती करना, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, यहाँ पर भी नव योग चल ही रहे हैं, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, औदारिक का योग, नव योग, अपगत वेद, क्षीण कषाय आदि के तीन ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक क्षायिक सम्यक्त्व, संगिनी आहारिणी साकार उपयोगिनी अनाकार उपयोगिनी होती है। अभी बिना देखे वहां सहयोगी जिनका लगाएंगे, लक्ष्मी मनुष्य नहीं है और सहयोगी जिन में लगाना है, आप ये उसके हेडिंग देख सकते हैं। हाँ हाँ, तेरवा गुणस्थान, अपर्याप्त भी लेना, समुद्रात के भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों लेना। हाँ, फिर पर्याप्ति छे और छे, हाँ चार और दो, हाँ समुद्रात लिया ना यहाँ पर। हाँ संज्ञा, अविक्षीण संज्ञा कहेंगे। हाँ गति, हाँ पंचेंद्रिय, त्रस्काय। अब योग बताने आपको, केवली के योग मालूम है, देखो दो दो होते हैं, मन मन के दो, वचन के दो। हाँ अब औदारी मिश्र और कर्मा सात हो जाएगी। हाँ सात योग, अपगत वेदी, अकषायी ज्ञान, केवल ज्ञान, हाँ यथाख्यात, हाँ हाँ द्रव्य से छोलेशा, हाँ न भव्य है, सिद्धों को भव्य से रहित करना, भव्य कब, जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक भव्य, कहाँ हो चुके वो, सिद्ध नहीं हो चुके हैं, वो संगी में लगाना, संगी असंगी से रहित, भव्य है सिद्ध, भव्य सिद्धिक शब्द है, यानी सिद्ध होने योग्य, नहीं नहीं वो संगी में लाना, संगी असंगी से रहित। हाँ यहाँ तो भव्य ही लिखने, शायिक समय तो अभी संगी में लगा लो, हाँ रहित, हाँ यहाँ से रहित, आहार दोनों, हाँ नहीं 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 युगपद होगा, हाँ युगपद दोनों है, युगपद है। हाँ अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम स्वयं टोटल जरा विचार करेंगे तो ख्याल में आती है बात। देखो एक सहयोगी गुणस्थान 531 पेज पर पढ़ रहे अभी, पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो जीव समझ, देखो तेरहवें में अपर्याप्त वो समुद्रात की अपेक्षा बता रहे, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया। अभी प्राण में वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये चार प्राण, क्योंकि केवल ज्ञान से जानते, अभी इंद्रिय प्राण एक भी नहीं कहेंगे इसको, और मन से भी नहीं जानना है तो मन बल प्राण भी नहीं कहेंगे। तथा समुद्घात की अपर्याप्त अवस्था में वचन बल और श्वासोच्छ्वास का अभाव हो जाने से आयु और कायबल ये दो प्राण होते हैं। हाँ, क्योंकि तीन समय तो है। शरीर होने पर भी श्वासोच्छ्वास बंद होता है क्या? हाँ, वही लिखा ना, वचन बल और श्वासोच्छ्वास का अभाव मूल शरीर में ही है। तीन समय के लिए मूल शरीर में श्वासोच्छ्वास नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसे भी आप रोक सकते हैं ना। आयु और कायबल ये दो प्राण होते हैं। क्षीण संज्ञा मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय। अब देखो, योग में सत्य और अनुभय ये दो मनोयोग, वैसे मनोयोग उपचार से होते हैं, परंतु सत्य अनुभव वचन योग के कारण इनके मनोयोग भी वही कहने में आते हैं। ये ही दो वचन योग, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग कब होता है मालूम है? कौन सा समुद्र? कौन सा वहाँ तो कारमान का योग है, कपाट। देखो, पहले समय में दंड है तभी तो औदारिक का योग, फिर दूसरे समय में कपाट है, यानी ऐसे फैलते हैं आड़े, तभी औदारिक मिश्र है। तीसरे समय में प्रतर है, तब कारमान है। हाँ, चौथे समय में तीन समय के लिए कारमान है, प्रतर, लोकपूरण, वापस प्रतर। कपाट, हाँ, फैलते समय भी और समेटते समय भी, दो समय के लिए औदारिक मिश्र, अलग अलग दो समय के लिए, एट ए टाइम तो एक समय होगा ना, और तीन समय कंटिन्यूस है, वो कारमण का योग है। ये सात योग हो गए। अपगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, कारमान का योग है ना, वहाँ तो औदारिक का योग ही नहीं है वहाँ पर, तो उसके श्वासोच्छ्वास भी नहीं होगा वहाँ पर। शरीर है परंतु उसका वो कार्य नहीं चल रहा है ना, श्वासोच्छ्वास वाला कार्य बंद रहेगा। नहीं नहीं, वो तो वैसे भी हमने देखा था। देखो, जब आहारक शरीर बनाता है मुनिराज, जब आहारक शरीर बनाते हैं तो औदारिक के परमाणु ग्रहण नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि नवे पुस्तक में आए, देखो, अकेले ग्रहण करना नहीं छोड़ना कहते, संघातन कृति, अपना हुआ है पर फिर भी है, मात्र ग्रहण करना। ये कब होगा कि औदारिक के मात्र ग्रहण कर रहे, छोड़ नहीं रहे? औदारिक, मैंने ये प्रश्न पूछा, ऐसा कब होगा कि औदारिक शरीर के परमाणु मात्र, केवल, ओनली ग्रहण किए, छोड़े नहीं? पहले समय में सभी जीवों को पहले समय में ग्रहण होता है, दूसरे समय से फिरना चालू होता है, क्योंकि ग्रहण करेगा तभी तो छोड़ना चालू होगा। तो पहले समय में मात्र, उसको संघातन कृति कहते हैं। दूसरे समय से ग्रहण भी है, नए नए और अन्य दो पूर्व पहले ग्रहण किए हुए छोड़ना भी चल रहा है, तो संघातन और परिशातन कृति कहते हैं। अब परिशातन यानी छोड़ना, अकेले छोड़ना, नहीं ग्रहण किया, ऐसा कब होगा? तो जब जीव आहारक शरीर बनाता है तो आहारक संबंधी परमाणु को ग्रहण करता है, औदारिक के परमाणु ग्रहण नहीं कर रहा है, तो औदारिक के मात्र परिशातन हो रहा है। यहाँ भी ऐसे हो रहा है, नए ग्रहण नहीं कर रहा है, वो
छोड़ते हैं पहले का है वो।
हाँ, ये नवे पुस्तक में आई की बात है, ये सब आहार का पहले समय में संघातन होगा, दूसरे समय से संघातन प्रति परिशातन दोनों होगा,
औदारिक का परिशातन ही होगा।
हाँ, उसके अंतर्मूल के लिए, अब मूल शरीर में लौट आया तो आहारक का परिशातन हो रहा है, अभी उसका तो लेना नहीं कुछ, और औदारिक का संघातन परिशातन भी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले पड़े हुए हैं, परिशातन तो चल ही रहा था। ये शब्द हम भी भूल गए थे अभी, और रेवती ने बहुत सारे प्रश्न पूछे ना, तो उसके लिए सारा देखना पड़ा मुझे। नौवे भाग में है, धवला के नौवे भाग में पूरा पुस्तक उसी पर है, यानी बहुत सारा हाँ अन्य भी विषय है उसके अंदर, यानी कब होता है, कितने समय तक हो सकता है, उसका अंतर कितना हो। नहीं नहीं वो तो छोड़ना होगा ही नहीं, जब आहारक शरीर बना रहे हैं तो औदारिक के परमाणु ग्रहण नहीं हो रहे, छोड़ना चल रहा है। नहीं कर रहा है उसके समय के लिए, वो तो बात आएगी अपनी, वहां पर चलेगी फिर। हाँ वो वैग्रिक भी शरीर बनेगा, अपन वहां तो औदारिक शरीर से विक्रिया करता है तो वो तो बनेगा उसमें। अभी उसके डिटेल सब हम उस पुस्तक में जब पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत विस्तार से है।
नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ
काय योग के नहीं, आहारक शरीर के, उस समय औदारिक के नहीं ग्रहण कर रहा।
हाँ, उस समय औदारिक के नहीं।
हाँ
नहीं, ये एक अंतर मुहूर्त होगा।
हाँ अंतर मुहूर्त तक होगा,
असंख्यात।
अभी देखो कितना विस्तार होगा, हमें तो कुछ नहीं मालूम इस जिनागम का। ये तो स्थूल रूप से कहते कि हम जीवकांड में ये विषय नहीं है, बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवकांड में तो हम कहते ना जितने आयु बाकी उतने तो उसकी निश्चय रचना भी होती है, पर उतने समय उनके लिए उसने नहीं ग्रहण किया, ऐसा कहेंगे हम। आगे के पुस्तकों में बहुत अलग अलग विषय है, इसलिए अरविंद भाई कह रहे थे डायरेक्ट सातवें आठवें पुस्तक से ले लो। नहीं अपना यहाँ से चलेंगे ना। नहीं पहले से अच्छा, ये इसमें भी कितने बातें, अब कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, अभी उस हिसाब से भी हम देखते कि कुछ विशेष पॉइंट्स हमें मिलते हैं इसमें। देखो ये दो प्राण तक हमने पढ़ा था ना, नहीं योग योग भी हो गए थे, केवल ज्ञान केवल दर्शन, अच्छा यथाख्यात विहार शुद्धि संयम केवल दर्शन। अभी आगे के पेज पर चलेंगे, द्रव्य से छहो लेशाएं, भाव से शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक चायिक सम्यक्त, संगिनी और असंगिनी इन दोनों विकल्पों से विमुक्त। संगिनी इसलिए कहा कि मनुष्य नी पर घटित करे, इसलिए आहारिणी अनाहारिणी साकार अनाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती हैं। देखो क्षीण कषाय तक तो वो ज्ञान का भेद था मनुष्यनी और सामान्य मनुष्यों में, परंतु संयोग में तो कुछ भेद ही नहीं रहा है ना। संयोग केवली जो सामान्य मनुष्यों के अलावा देखे थे निकालो। इन जनरल देखे थे ना हमने, वो तो उन्होंने कहा था गुणस्थान के अनुसार है, 448 गुणस्थान के जो आलाप थे वैसा ही है ऐसा कह दिया था। यानी अभी हमने जो पेज नंबर 531 पर देखा, 137 नंबर के टेबल में, और जो हमने 448 पेज पर नंबर 25 टेबल देखा था, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना? आपको कुछ लगता है वहां पर डिफरेंस नहीं है? हमने देख लिया पूरा। जीव समाज भी संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त, यहाँ तो प लिखा है, लिखने में अलग है परंतु समास तो वही है। ख्याल में है क्या बात है? यानी जब तक क्षीण कषाय तक तो हमने मन परे ज्ञान के बिना उनको लिया था, अब सहयोगी में तो केवल ज्ञान है तो सबका समान है, तो यहाँ मनुष्यनी का हो या सामान्य मनुष्यों का हो आलाप वही होगा। बढ़ेंगे अभी आगे, साकार अनाकार युगपत उपयोग तीनों नहीं, वो दोनों उपयोग होते हैं परंतु वो एट ए टाइम होते
हैं।
हाँ यू उ साकार अनाकार युगपत उपयुक्त कहना तो वही है। अब 532 पेज पर आए हैं। अयोगी जिन, अब सहयोगी में डिफरेंस नहीं तो अयोगी में भी डिफरेंस नहीं होगा। अभी यहां से पढ़ेंगे हम। अयोगी जन गुणस्थान वर्तिनी मनुष्य नियों के आलाप कहने पर, एक अयोग केवली गुणस्थान, एक संगी शब्द डालना वहां पर, एक संगी पर्याप्त जीव समास आपके लिखे के उसके अंदर, छह पर्याप्तियां, अब एक ही प्राण है, एक आयु प्राण, क्षीण संज्ञा, मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, अयोग स्थान यानी योग नहीं है अभी यहाँ पर, अपगत वेद स्थान, अकषाय स्थान, केवल ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम, केवल दर्शन, द्रव्य से छह लेशाय, भाव से अलेशा स्थान, भाव से जीरो, क्योंकि शरीर का जो वर्ण है वो तो रहेगा वहां पर, भव्य सिद्धि, देखो 14 तक भव्य कह रहे हैं, क्षायिक सम्यक्त्व।
एक मिनट।
हाँ
यहाँ पर जो लिखा है यथाकैत विहार शुद्धि संयम, इसकी जगह यथाकैत चारित्र लिखे तो?
नहीं नहीं वो संयम का नाम है ना, पहले हम देखा है यथाकैत अच्छा। विहार शुद्धि संयम, ये संयम का भेद है, वहाँ हम प्ररूप नाम चारित्र नहीं कह रहे, उसको संयम कह रहे, अर्थ वही है परंतु यही शब्द हम अभी तक यूज कर रहे हैं, यानी उनका ये चारित्र होता है, कहने में कोई हर्जा नहीं है।
नहीं नहीं वो लिखने समय यथा क्या चारित्र
नहीं, 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 जो यहाँ यहाँ के जो शब्द है वो हमको यूज करना है। आलाप में उन्होंने संयम शब्द लिया है तो हम तो संयम कहेंगे। देखो संगीनी और असंगीनी इन दोनों विकल्पों से मुक्त, अभी आहारक में अनाहारक है क्योंकि योग नहीं है तो अनाहारक है, ये महत्व की बात है यहाँ पर। साकार और नाकार इन दोनों उपयोगों से युगपत उपयुक्त होती है, यानी दोनों उपयोग एट ए टाइम चलते हैं, हमारा एक उपयोग है फिर उसके बाद दूसरा होगा, ज्ञान उपयोग या दर्शन उपयोग। हमने अभी तक सामान्य मनुष्य देखे, मनुष्य पर्याप्त देखे, मनुष्य नहीं देखे, अब लब्धि अपर्याप्त मनुष्य आप बताएंगे उसके आज गुणस्थान कौन सा होगा?
पहला।
और जीव समास बराबर है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी जीव समास कौन सा है पूछा मैंने, लब्धि अपर्याप्त मनुष्य, तो बहुत टाइम लगा दे बताने को। अरे मनुष्य है तो हाँ ऐसा विचार करके उसको डिराइव करना, मनुष्य है तो संगी पंचेंद्रिय, भले वो लब्धि अपर्याप्त हो भले जो कोई है, पांच कैसे संगी कह रहे हैं, संगी अपर्याप्त, छह अपर्याप्तियां कहेंगे। देखो ये जिसको हम कहेंगे ना बहुत छोटी आयु में मर जाते हैं, उसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, कितनी चालू हो गई, छह के छह चालू हो गए तो छह ही अपर्याप्त रही, इसलिए छह अपर्याप्तियां कहेंगे। देखो लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, आप उसके योग बताएंगे,
योग ना
और लेशा
द्रव्य से कापो तो शुक्ल और भाव से तीन अशुक्ल।
बहुत अच्छा, चलो अभी पढ़ेंगे इन अटकने के कौन कौन से क्या क्या वो हमने देखा, भाव से तीन अशुक्ल, मिथ्या दृष्टि है ना, और अपर्याप्त जीव है, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर, एक मिथ्यात्व गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र का योग और कार्मण का योग, ये दो योग। देखो वेद में नपुसक वेद लेना है, लब्धि अपर्याप्त है ना, इसमें स्त्री पुरुष वेद नहीं होते, ये नपुसक वेद। यानी कहाँ कौन सी बातें कहाँ ख्याल में रखनी है वो ख्याल है। चारों कषाय है, ज्ञान में कुमति और कुश्रुति, ये दो अज्ञान। असंयम है, चक्षु अचक्षु दो दर्शन है, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, वो लेव्याएं हुआ लेश्याएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत, ये तीन लेश्याएं, भव्य से दिक और अभविष्दिक, कोई भी जो इस पर्याय में आ सकता है। मिथ्या तो ये संगी है, आहारक अनाहारक दोनों है, क्योंकि विग्रह गति में उनको अनाहारक कहेंगे, वहां पहुंचने पर आहारक कहेंगे, साकार और अनाकार उपयोग वाले।
एक बार इसको सम्यक होगा तो क्या वो भी लग गया पर्याप्त हो सकता
है? हाँ देखो, एक बार सम्यक होके छूटा किसी जीव को तो 14 जीव समास में कहीं पर भी घूम सकते हैं। मिथ्या तो है ना, मिथ्या तो में कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन इतना अनंत काल है, वो तो त्रस में रहे ये भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि त्रस का काल बहुत लिमिटेड है, 2000 साल है, उसके आगे अनंत काल तो बहुत, क्योंकि अर्धपुद्गल भी अनंत काल है, तो मेजोरिटी ले तो एक इंद्रिय में कितनी बार जाएगा वो। अब हमने नारकी के देखे, तीरियंच और मनुष्य के देखे, अब देव गति में सामान्य देवों के सामान्य आलाप कहने पर, सामान्य देव और सामान्य आलाप क्यों कहा? हाँ, भवन वासियों की कथन अलग होता है और ऊपर के वैमानिकों का अलग होता है ना, फिर उसमें लेशाएं अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उसमें अलग अलग हम डिफरेंसेस करते हैं। तो सामान्य देवों के सामान्य आलाप है, वो क्या पूर्ण स्थान कितने हो गए टोटल, सब मिलकर हम कहेंगे, जो कहीं पर भी लागू होता है वो हम वहाँ कहेंगे। तो सामान्य देवों में लेशाएं कितनी होगी लक्ष्मी? बरोबर है, तो हमने सामान्य देवों के सामान्य आलाप पूछे। हाँ, वो कौन सी अपेक्षा वो कहना, अपन ये छह लेशा कहेंगे हम। हाँ देखो, अभी हम पढ़ेंगे इसको। देवगति में सामान्य देवों के सामान्य आलाप कहने पर आदि के चार गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। अभी अपर्याप्त जो कहते हो तो निवृत्ति अपर्याप्त, छह पर्याप्तियां, छह अपर्याप्तियां, दस प्राण, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देव गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग। अब यहाँ वैक्रिय कहना देव है ना, वैक्रिय कायोग और वैक्रिय मिश्र कायोग और कारमाण कायोग, ये 11 योग। नपुसक वेद के बिना दो वेद, यानी देवों में दो ही वेद वाले, स्त्री और पुरुष। चारों कषाय है, अभी सभी गुणस्थान लिए तो तीन अज्ञान और तीन ज्ञान, असंयम। आदि के तीन दर्शन, चक्षु चक्षु अवधि दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, यहाँ क्या लिखा कौन ब्रैकेट में, यहाँ तीन अशुभ लेशाएं, अपर्याप्त काल की अपेक्षा जानना चाहिए, वो भी अपर्याप्त किसने, भवनत्रिक में, यानी सभी ऊपर के देवों में नहीं लेना, परंतु सामान्य की बात है इसलिए अलग अलग नहीं बता, पर हमें समझने के लिए भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में, वहाँ मिथ्यात और साधन में ही जीव जन्मते हैं, तो वहाँ नियम से अशुभ ही होती है। हाँ, हाँ, द्रव्य और भाव से छो लेशाएं बताई ना उन्होंने। नहीं 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 नहीं, तीन अशुभ ही बनते हैं, भवनत्रिक में जन्म लेने वाले तीन अशुभ लेशा में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि मिथ्या तो और सासाधन के साथ जन्मेंगे वहाँ पर।
तो
इसके लिए भोग भूमि के लिए वहाँ समय दृष्टि जा रहा है कापोत के साथ, यहाँ समय दृष्टि उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, क्या नहीं
ना।
हाँ हमने अभी पढ़ा ना उसको, और वो भी भवनत्रिक में अपर्याप्त काल में, सौधर्म ईशान में अपर्याप्त काल में पीतलेशा ही होगी, भले वो मिथ्या दृष्टि है। आप द्रव्य की बात कर रहे थे, अरविंद भाई द्रव्य की बात कर रहे थे कि असुर कुमार वो तो काले रंग के होते हैं, और यहाँ छह लेशाएं द्रव्य से, ये जो है ना वैक्रिक शरीर है और वो अन्य भी क्रिया से बनाते भी है। देखो पीत पद्म और शुक्ल लेशा वालों की द्रव्य से लेशा वही होगी। अब बात रही है भवनत्रिकों की, कोई भी रंग ले सकते, विक्रिया वाले के छह तो द्रव्य लेशा होती है, द्रव्य लेशा। हाँ नहीं नहीं आपकी बात सही है, भवनत्रिक में होगी ना अलग अलग लेशा वाले, द्रव्य लेशा। हाँ बोलो क्या प्रश्न है। हाँ प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है, कट ही हो गया। हाँ ये आपस में वो द्रव्य लेशा की बात कर रहे
हैं,
वो तो यहाँ किसमें सौधर्म से लेकर जो द्रव्य की भाव की समान है। हाँ अभी असुर कुमार आदि में द्रव्य की लेशा मुझे देखनी पड़ेगी वहाँ पर कौन सी होती है। इसमें मिलेगा क्या द्रव्य लेशा। हाँ अरविंद भाई देवों की भावों की और वो वही रहती है, परंतु अभी असुर कुमार की बोल रहे हैं नहीं, राक्षस जाति के अंतरों का भी होता है ना कुछ काले रंग के। हो सकता है उन्हीं में ये तो द्रव्य से छह लेशा है। यहाँ यहाँ देखो ना अभी भवनत्रिक की बात अलग आएगी ना, यहीं पर आगे चल के वो तो भाव से नहीं, द्रव्य से छह लेशा है। हाँ हाँ 548 में, ओ आगे की पेज पर नेक्स्ट। द्रव्य से छह लेशा है। ये भवनत्रिक में होना चाहिए, अलग अलग कलर इसमें भी है। भवनत्रिक में छह द्रव्य लेशा संभव है, ये जैन सिद्धांत कोश में से पढ़ रही हूँ। यहाँ धवला दो का ही आधार दिया है 532 से 535 तक।
यहाँ शंका भी की है ना, पढ़ रहे हो।
हाँ हाँ वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से भवनवासी वान व्यंतर चाहिए, वात व्यंतर हुआ, और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छह लेशाएं होती है भवनत्री के ऊपर। हाँ कृष्ण लेशा श्याम वर्ण, देखो अभी अपने पुस्तक पर आते धवला में।
हाँ
वो उसी का रेफरेंस दिया वहाँ पर। जो हमने पढ़ा था उसी की बात हम क्रम से चलेंगे। 534 पर हम पढ़ रहे थे लेशा के बारे में, वहीं अटके थे। ये द्रव्य और भाव से छह लेशा बताई, तो सौधर्म आदि की जिनके पीत लेशा है भाव से, वो द्रव्य से भी पीत है। बीच वाले जो है वो द्रव्य भाव से पद्म है, और ऊपर के द्रव्य भाव से शुक्ल है। भवनत्रिक में द्रव्य से छह लेशा है, यहाँ इन जनरल बात है इसलिए सबको ले लिया। और भाव से भी अशुभ लेशा लेने का कारण यह है कि भवनत्रिक में मिथ्यात्व और सासाधन के साथ जन्म होता है, और वहां उनकी अशुभ लेशा होगी। भव्य सिद्धि भी है, अभव्य सिद्धि भी है, छहो सम्यक है, इन जनरल ले रहे। भवनत्रिक की बात अलग से लेंगे तो वहां क्षयिक सम्यक तो नहीं पाया जाए। संगी आहारक अनाहारक, साकार उपयोग और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं सामान्य देवों के पर्याप्त आलाप कहने पर, वो पर्याप्त शब्द बाद में चाहिए। आदि के चार गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काएं, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैक्रिक का योग, नव योग, स्त्री और पुरुष ये दो वेद, चारों कषायें, तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान, क्योंकि सभी जीवों को ले रहे एक से चौथे गुण स्थान तक के। असंयम आदि के तीन दर्शन और द्रव्य से छह लेशाएं, यहाँ लिखा है देखो, पर्याप्त जीवों के द्रव्य की छह लेशा बताई। शंका, यहाँ पर शिष्य कहता है कि देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य से छह लेशाएं होती है, यह वचन घटित नहीं होता है, क्योंकि उनके पर्याप्त काल में भाव से छह लेशाओं का अभाव है। यदि कहा जाए कि देवों के भाव से छह लेशाएं मत होवे, किंतु द्रव्य से छह लेशाएं होती ही है, क्योंकि द्रव्य और भाव में एकता का अभाव अर्थात भेद है, सो ऐसा कथन भी नहीं बनता, क्योंकि जो भाव लेशा होती है उसी लेशा वाले ही औदारिक वैक्रिक और आहारक संबंधी नौ कर्म परमाणु आते हैं। यदि यह कहा जाए, ये उसकी शंका है, उसके अपने विकल्प बता रहे, उक्त बात कैसी जानी जाती है, तो उसका उत्तर यह है, सौधर्म आदि कल्पवासी देवों के भाव लेशा के अनुरूप ही द्रव्य लेशा का प्ररूपण किए जाने से उक्त बात जानी जाती है। ये बात केवल वो कल्पवासियों के लिए लागू हो रही तथा देवों के पर्याप्त काल में तेज पद्म और शुक्ल इन तीन लेशाओं को छोड़कर अन्य लेशाएं होती नहीं है, इसलिए देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य की अपेक्षा भी तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होना चाहिए। इस प्रकरण में ये गाथाएं उपयुक्त है, वो अभी शंकाकारी गाथा बता रहे हैं, इसलिए गाथा पढ़ेंगे। ये 38, 39, 160 पढ़ेंगे, दो गाथा। किन्ना भमर सवन्ना नीला पुणनी लगुलिय संकासा काउ कौदवन्ना तेऊ तवणिज्जवन्नाय पम्मा पौम सवन्ना सुक्का पुनकास कुसुम संकासा किन्नादिदौवले सा वर्ण विशेषो मुने यौवो। कृष्ण लेशा किन्ना है ना, भौरे के समान अत्यंत काले वर्ण की होती है। नील लेशा नील की गोली के समान नील वर्ण की होती है। कपोत लेशा कपोत वर्ण वाली होती है। तेजो लेशा एक कपोत यानी ऊपर काऊ कहा है कवोद वर्ण, तेजो लेशा यानी पीत लेशा सोने के समान वर्ण वाली होती है। पद्मलेशा पद्म के समान वर्ण वाली होती है। पद्म समझते हैं? कमल। कमल था। ये कपोत में क्या કપોત એને કબૂતર જાય છે, કાપોત કહે છે, કપોત કાપોત દોનો નામ આવે. ના, પદ્મ મેં લાલ નહીં, હા વો વ્હાઈટ થોડા સા મિક્સ હોતા ને ઉસમે પિંક વ્હાઈટ એસા પદ્મ. ઓર શુક્લ લેશા કાંસ કે ફૂલ કે સમાન શ્વેત વર્ણ કી હોતી હૈ. ઇસ પ્રકાર કૃષ્ણાદિ દ્રવ્ય લેશાઓં કે વર્ણ વિશેષ જાનના ચાહીએ. અબ ઇસમે બહોત સારે કોમ્બિનેશન્સ હોગે પણ યે મુખ્ય બતાએ હૈ. ભાવ લેશાઓં કે ચિહ્નો કા થોડે મેં સંગ્રહ રૂપ સે યહ ગાથા જ્ઞાન કરા દેતી. યે સબ શંકાકાર ને ગાથાએ ઉપસ્થિત કીએ જો ઓરિજિનલી હૈ ઓર ઉસ પે વો તો કુછ અન્ય ડિફરન્સ ઇન્ફરન્સ નિકાલ રહા હૈ. 240 નિમૂલ કંદ સાહુ વસાહમ ઉચ્ચિત વાહુ પડિદાયિમ અભ્યંતર લેસાણમ ભિંદઈ એ દાઈ વયણાઈ. જડ મૂલ સે વૃક્ષ કો કાટો સ્કંદ સે કાટો. યે આપકો માલુમ હૈ એક એસા ચિત્ર આતા હૈ લેશાઓં કા ચિત્ર કહેને મેં આતા હૈ. યે છ પથિક જા રહે હૈ ઓર ઉન્હોને દેખા કે એક આમ્ર વૃક્ષ આમો સે અચ્છે ફલ લગે હૈ ઉસકે. તો ક્યાં સોચતે હૈ? કોઈ સોચતા હૈ કે ઇસ વૃક્ષ કો જડ મૂલ સે કાટો ઓર ફિર આમ ખાઓ. મેં ઇસકો પૂરા કાટુંગા ફિર આમ ખાઉંગા. તો આમ ખાને કે લિયે પૂરા વૃક્ષ ઉખાડના ચાહતા હૈ. દૂસરા ક્યા કે સ્કંદ સ્કંદ એને તો બડી ટ્રંક ઉસકે વહાં સે કાટો ઉસકો. તીસરા સોચતા હૈ શાખા ઉનસે કાટો એને બડી બડી શંખ. ચોથા કહેતા હૈ ઉપશાખા ઉનસે કાટો. ઉપશાખા એને શાખા ઉનકી છોટી છોટી બ્રાન્ચિસ. એક સોચતા હૈ કે ફલોં કો તોડ કર ખાઓ. કિતને હુએ? પહેલા વાલા કૃષ્ણ, ફિર નીલ, ફિર કપોત, ફિર પીત, ફિર પદ્મ વાલા કે ફલોં કો તોડ કર ખાઓ. કેવલ આમ કો તોડો ના, બાકી ક્યું ઇતના સબ કાટતે. ઓર અંતિમ સોચતા હૈ વાયુ સે પતિત ફલોં કો ખાઓ. હરેક કે સોચને મેં બોલને મેં ફરક હૈ કે નહીં? એ મન વચન ઓર કાય સબ મેં લગા લેંગે હમ. હો ના લૌકિક મેં હે ના થોડે મેં હોતા હૈ તો ફિર ઉસકે લિયે પૂરા યે આરંભ પરિગ્રહ કરના ચાહતા હૈ. લૌકિક મેં ભી યહી બાત લાગુ હોતી. યે તો ઉદાહરણ કે તોર પર એક વૃક્ષ કી બાત સમજાના ચાહતી. યે અત્યંત સ્થૂલ રીતિ સે કશાયો કા યને લેશાઓ કા સ્વરૂપ બતાના થા. ઇસ પ્રકાર કે યે વચન વચન પર લે લિયા હૈ. અભ્યંતર અર્થાત ભાવ લેશાઓ કે ભેદ કો પ્રકટ કરતે હૈ. क्योंकि वचन तो उसके भाव के अनुसार निकल रहे तो ये उसको बता रहे हैं. विशेषांत गोमरसार जीव कांड में उक्त अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है. फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर कृष्ण लेशा वाला विचार करता है इस वृक्ष को जड़मूल से उखाड़ कर फलों को खाना चाहिए. नील लेशा वाला विचार करता है कि इस वृक्ष को स्कंद अर्थात मूल से ऊपर के भाग को काट कर फलों को खाना चाहिए. કાપોત લેશા વાલા વિચાર કરતા હૈ ઇસ વૃક્ષ કી શાખાઓ કો કાટ કર ફલોં કો ખાના ચાહીએ. તેજો લેશા વાલા વિચાર કરતા હૈ ઇસ વૃક્ષ કી શાખાઓ કો કાટ કર ફલોં કો ખાના ચાહીએ. પદ્મ લેશા વાલા વિચાર કરતા હૈ ઇસ વૃક્ષ કે ફલોં કો તોડ કર ખાના ચાહીએ. શુક્લ લેશા વાલા વિચાર કરતા હૈ ઇસ વૃક્ષ કે વાયુ સે ગિરે હુએ ફલોં કો ખાના ચાહીએ. ઉક્ત પ્રકાર કે ભાવોં સે છહો લેશાઓં કે તારતમ્ય કો જાન લેના ચાહીએ. ભાવો કો સમજના ચાહીએ ક્યુંકિ યે તો ભાવ સ્વરૂપ હૈ ને લેશાએ. તો યાની બહાર કેવલ કૃતિ મેં નહીં લેના હૈ ઉસકો, ભાવો કો લેના હૈ. ઓર કૃતિ મેં ભી ઉસ ભાવ સહિત વાલી જો કૃતિ હોતી હૈ તો ઉસકો સમજાયેંગે. તો યે તો શંકાકાર ને શંકા પૂછી. અભી વે શંકાકાર હી અભી ઓર ભી ગાથાએ પ્રસ્તુત કર રહા હૈ. 241 તેઉ તેઉ તહ તેઉ પમ્મા પમ્માય પમ્મ સુકાય સુકાય પરમ સુકા लेस समासो मुने यो तिन्नम दोन्नम दोन्नम छन्नम दोन्नम च तेरसन्नम च एतो यचोद्दसन्नम लेसा भेदो मुने यो। देखो तीन के तेजो लेशा का जघन अंश जघन्य अंश तीन के ने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष तेऊ तेऊ तह तेऊ पहला तेऊ एने जघन्य दूसरा तेऊ एने मध्यम मध्यम लेशा का मध्यम अंश। देखो पीत में जघन्य ने तो कम विशुद्धि है पीत में उत्कृष्ट है ने विशुद्धि बढ़ रही है तो पहले जघन्य फिर मध्यम फिर उत्कृष्ट ऊपर ऊपर के देव में उत्कृष्ट की तरफ होगा ऐसे ऊपर भी लगाना। देखो पहला तेव है वो जघन्य दूसरा तेव मध्यम है तीसरा तेव है वो उत्कृष्ट है यानी तेव पम्मा लिखा ना उत्कृष्ट और जघन्य दोनों लेना तेव में उत्कृष्ट और पम्मा में जघन्य अकेला पम्मा है वो मध्यम लेना पम्म सुक्का में पम्मा उत्कृष्ट और सुक्का जघन्य है बाद में सुक्का है वो मध्यम है परम सुक्का है वो उत्कृष्ट है यानी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जघन्य मध्यम उत्कृष्ट इस तरह से उसके हम भेद लिखे अभी यहाँ पर अभी नीचे हम पढ़ेंगे उसको। देखो तीन के तेजोलेशा का जघन्य अंश दो के तेजोलेशा का मध्यम अंश दो के तेजोलेशा का उत्कृष्ट एवं पद्मलेशा का जघन्य अंश ये अभी तीन के दो के समझ में आती है बात। हाँ पहले तीन यानी भवनात्रिक फिर दो के तेजोलेशा का मध्यम अंश यानी सौधर्म ईशान में वो नीचे विशेषार्थ में लिखेंगे और तेजो का उत्कृष्ट अंश यानी सानत कुमार महेंद्र में वहाँ किसी जीव को तेज का उत्कृष्ट भी होता है और पद्मलेशा का जघन्य अंश वहीं से शुरू होता है। फिर छह के पद्मलेशा का मध्यम अंश छह ने ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापी शुक्र महाशुक्र दो के पद्मलेशा का उत्कृष्ट एवं शुक्ललेशा का जघन्य अंश शतार सहस्रार में तेरह के शुक्ललेशा का मध्यम अंश यानी आनत प्राणत आरण अच्युत नव ग्रहदेव ये मध्यम तथा चौदह के परम शुक्ललेशा होते चौदह ने नव अनुत्तर और पांच अनुदिश सॉरी बराबर है ना पांच अनु नव अनुदिश और पांच अनुत्तर मैंने उल्टा बोला ना। इस प्रकार तीनों शुभलेशाओं का भेद जानना चाहिए ये शंकाकार अभी भी अपनी शंका उपस्थित किए हुए है और उसके लिए वो गाथाएं प्रस्तुत कर रहा है विशेषार्थ अभी जो हमने ऊपर देखा वही इसको बता रहे भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिष इन तीन जाति के देवों के पर्याप्त अवस्था में पर्याप्त शब्द डाला जघन्य तेजोलेशा होती है सौधर्म ऐशान इन दो स्वर्ग वाले देवों के मध्यम तेजोलेशा होती है अभी यहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं है सानत कुमार और महेंद्र इन दो स्वर्ग वाले जीवों के देवों के उत्कृष्ट तेजोलेशा और जघन्य पद्मलेशा होती है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र इन छह स्वर्ग वालों के मध्यम पद्मलेशा होती है शतार और सहस्रार इन दो स्वर्ग वालों के उत्कृष्ट पद्मलेशा और जघन्य शुक्ललेशा होती है आनत प्राणत आरण अच्युत और नव ग्रहदेव तेरह विमान वालों के मध्यम शुक्ललेशा होती है। ये जो गाथाएं है ना ऊपर की सब एक दो नंबर वो गोमरसार जीव कांड में भी आई हुई है इसके ऊपर नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर इन चौदह विमान वालों के उत्कृष्ट या परम शुक्ललेशा होती है। ये यहाँ तक की शंकाकार की शंका उसकी मेन बात क्या है देवों में जैसा है जैसे द्रव्य की लेशा भाव की है वैसे उनके शरीर के भी लेशा होती है वर्णा इसलिए वो अन्य भी सभी में यही बात बताना चाहते हैं तो देवों में छह अशुभ कैसे हो सकती है उसका प्रश्न है समाधान। यानी छह लेशा द्रव्य की बताई, शुभ उसमें शुभ अशुभ नहीं लगाना परंतु सभी है ऐसा बताया था। शंकाकार की पूर्वोक्त शंका का अब परिहार करते हैं। पूर्व में कही गई ये गाथाएं तो तुम्हारे पक्ष का नहीं साधन करती है। उसका पक्ष क्या है? जैसी भाव से वैसे ही द्रव्य की होनी चाहिए, क्योंकि वे गाथाएं उभय पक्ष में साधारण अर्थात समान है। उभय पक्ष कौन सा? कि द्रव्य और भाव से वो तो उसका कहीं समान होने का कोई नियम नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। और न तुम्हारी कही गई युक्ति भी घटित होती है। उनकी क्या युक्ति बताई थी? जैसा द्रव्य का भाव का है वैसा द्रव्य का, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। द्रव्य लेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भाव लेशा का तो अनुकरण करती नहीं है, अन्यथा अशुभ तीन लेशा वाले उत्तम भोग भूमिया मनुष्यों के, देखो अशुभ तीनों लेशा होती है भोग भूमि में, ये स्पष्ट शब्द में आया है। यानी सम्य दृष्टि कपोत लेशा सहित जन्मता है, परंतु वहां मिथ्या दृष्टि अशुभ तीन लेशा में जन्मी है। हाँ उत्तम भोग में भी दिया। हाँ धवल वर्ण सबको होता है, क्योंकि विग्रह गति भी सबका धवल वर्ण है। पर्याप्त काल है धवल और फिर कपोत। देखो क्या कहते हैं, यानी उसने जो युक्ति दी वो घटित नहीं होती, क्योंकि वहां तो अशुभ लेशा होते हुए भी धवल वर्ण पाया जाएगा। देखो द्रव्य लेशा वो भी अपर्याप्त ही है ना, वहीं पर धवल होगी, वहां धवल और वहां पहुंचने पर कपोत, वो तो नियम है सबके लिए।
यहां जो अपर्याप्त काल में धवल वर्ण का अभाव हो सकता है वो तो कार्मिक काल के समय।
हाँ हाँ देखो द्रव्य लेशा अपर्याप्त काल में होने वाली भाव लेशा का तो अनुकरण करती नहीं है, अन्यथा अशुभ तीन लेशा वाले उत्तम भोगभूमिया मनुष्यों के अपर्याप्त काल में धवल वर्ण के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी अपर्याप्त काल में जो दो वर्ण बताए कपोत और शुक्ल, वो नहीं हो सकता शुक्ल, एक बात। तथा कर्म भूमि जो मिथ्या दृष्टियों के भी अपर्याप्त काल में गौर वर्ण का अभाव प्राप्त होता है। कर्म भूमि में तो तीन अशुभ लेशा होती है, वहां पर भी वही बात हो जाएगी। इसी प्रकार पर्याप्त जीव संबंधी द्रव्य लेशा पर्याप्त काल संबंधी भाव लेशा का नियम से अनुकरण नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है, अभी पर्याप्त जीवों के मनुष्य तीन इंचों में छह लेशाओं का परिवर्तन चल रहा है, तो वहां पर वर्ण का भी परिवर्तन होता रहेगा। ख्याल में आई बात? हाँ, ये तो हर अंतर्मुहूर्त में वर्ण पलटेगा, वो तो सरडा होता है ना, क्या होता है वैसा, क्योंकि वैसा मानने पर छह प्रकार की भाव लेशाओं में निरंतर परिवर्तन करने वाले पर्याप्त और तिर्यंच और मनुष्यों के द्रव्य लेशा के अनियम पने का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। यानी वहां जो देवों के लिए कुछ बातें बताई है तो ये सबके लिए वो लागू करना चाहता है, वो घटित नहीं होता। अशुभ ही है जो द्रव्य की नहीं, द्रव्य की तो शुक्ल और कपोत भाव की मिथ्या दृष्टि है, तीन अशुभ ही होती है, और वहां सम्यक के साथ उत्पन्न होगा जो क्षायिक सम्यक दृष्टि, यहाँ से तो भाव से कपोत लेशा में उत्पन्न होगा, वो कपोत का जघन्य अंश कहने में आता है वहां पर। तो कहते अगर वो तो बदलते रहेगा और यदि द्रव्य लेशा के अनुरूप ही भाव लेशा मानी जाए, जैसी द्रव्य लेशा है वैसी भाव लेशा मानेंगे, तो धवल वर्ण वाले बगुले के भी बाहु से शुक्ल लेशा का प्रसंग प्राप्त होगा। तथा धवल वर्ण वाले आहारक शरीरों के और धवल वर्ण वाले विग्रह गति में विद्यमान सभी जीवों के, सभी जीव लिया ना, विग्रह गति वाले सभी को ले लिया, भाव की अपेक्षा शुक्ल लेशा की आपत्ति प्राप्त होगी। दूसरी बात यह भी है, द्रव्य लेशा वर्ण नामा नाम कर्म के उदय से होती है, भाव लेशा से नहीं। भाव लेशा के कारण उस जाति के वर्ण को नहीं ग्रहण किया जाता, इसलिए दोनों लेशाओं को एक कहे नहीं सकते, क्योंकि अघातिया और पुद्गल विपाकी वर्णनामा नाम कर्म, ये नाम कर्म कौन सा है, तो अघाती कर्म है, और वर्ण नाम कर्म है शरीर का वर्ण है, वो पुद्गल विपाकी, पुद्गल में उसका फल मिलता है, वर्णनामा नाम कर्म। तथा घातिया और जीव विपाकी चारित्र मोहनीय कर्म, इन दोनों की एकता में विरोध है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो द्रव्य लेशा है वो नाम कर्म का जो भेद है वर्ण नाम कर्म, उसके उदय से होती है, और भाव लेशा क्यों होती है, कषाय से अनुरंजित योग का परिणाम। यहाँ तो चारित्र मोहनीय का उदय उसमें निमित्त है, कषाय के उदय स्थान जो है वो चारित्र मोहनीय से होते हैं, इसलिए दोनों में डिफरेंस है, वो घातिया कर्म है ये अघातिया कर्म है, और भाव लेशा में वो जीव विपाकी है और द्रव्य लेशा में ये पुद्गल विपाकी है वर्णनामा नाम कर्म, इसलिए दोनों एक नहीं हो सकते। यदि कहा जाए कि कर्मों के विसर्गोपचय का वर्ण तो भाव लेशा से होता है और औदारिक वैक्रिक आहारक शरीरों के वर्ण वर्णनामा नाम कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए हमारे कथन में यह उक्त दोष नहीं आता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है। यानी वो विसर्गोपचय भी भाव लेशा के कारण सफेद नहीं है, क्योंकि कृष्ण लेशा वाला जीव चंडकर्मा होता है, वैर नहीं छोड़ता इत्यादि रूप से बाहरी कार्यों के उत्पन्न करने में तथा स्थितिबंध और प्रदेश बंध में भाव लेशा का व्यापार देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं, कृष्ण लेशा वाला जीव चंडकर्मा है ना, क्या वो तो जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, ऐसा हम कहेंगे उसको, तो उसमें भाव लेशा का व्यापार यानी भाव लेशा का कार्य क्या हो रहा है, उसके जो कुछ अन्य अन्य जो बाह्यरी कार्य होते हैं, चंडकर्मा जिसको कहेंगे, वैर नहीं छोड़ रहा है। हाँ, और कैसा है, स्थिति बंद और प्रदेश बंद में वो, क्योंकि प्रदेश बंद इसलिए लिया, योग भी लिया है ना, और कषाय के कारण स्थिति बंद होता है, यानी चारों ही प्रकार का बंद हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि भाव लेशा द्रव्य लेशा के होने में कारण नहीं है। भाव लेशा का जो कार्य है वो अलग है, द्रव्य लेशा का कार्य जो वो जो है वो अलग है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलितार्थ निकला कि वर्णनामा नाम कर्म के उदय से भवनवासी वानवेंतर और ज्योतिषी देवों के द्रव्य की अपेक्षा छह लेशाएं होती है, तथा भवनत्रिक से ऊपर के देवों के तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है। यानी उनके भी जो होते वो भाव के कारण नहीं हो रहे, उनके द्रव्य वर्ण नाम का ही ऐसा ही उदय है, बस ये उसका कारण है। ये भवनत्रिक में होते हैं ना, बहुत सारे भवनवासी अंतर जो है ना, काले वर्ण के अन्य अन्य वर्ण के छह लेशाएं ली वहाँ पर।
हम बहुत बार ऐसा बताते हैं कि व्यंतर जो देव है वे बहुत सुंदर खूबसूरत वगैरह होते हैं,
पर उनमें भी अलग अलग आठ प्रकार के है ना, उसमें भी हरेक का रंग हरेक का ही अलग अलग है। हाँ, त्रिलोक सार में हमने पढ़ा था, वर्ण की बात देखी थी हमने शायद। क्योंकि वर्ण हमने शायद देखे थे। हाँ, उसमें भी काले वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले, ऐसे अलग अलग वर्ण वाले होते हैं। उनमें मूल शरीर उनके अलग अलग होते हैं। हाँ। अब शंका पूछ रहे, बहुत वर्ण वाले जीव शरीर की एक लेशा कैसे बन सकती है? बहुत लेशा वाले नहीं, जैसे बाल है काले है, वो रहा है बदन ओठ लाल है, तो ये कैसे अलग अलग होते हैं? आंखें नीली है। समाधान, नहीं, क्योंकि प्राधान्य पद का आश्रय कर, यानी प्रधानता से, मुख्यता से काक कृष्ण है। इस प्रकार पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं। पांचों वर्ण वाला काक क्यों कहा? हाँ, वो थोड़े अलग अलग कलर हो गए और उनमें भी अलग अलग वर्ण पाए जाएंगे ना। काका कुआ वगैरह सफेद भी होते हैं ना, ऐसे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार हाँ, आंखें वगैरह अलग अलग वर्ण वाले हैं ना, ग्रे है, थोड़ा ज्यादा काला है, या पैर उसके अलग कलर के हैं, मुंह खोलेगा तो अंदर चोच केवल अन्न नहीं, मुंह खोलेगा तो अंदर जो गुलाबी दिख रहा है ना उसके जीव वगैरह। पांचों वर्ण वाले काक को जिस प्रकार कृष्ण कहते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में द्रव्य से छह लेशाओं के होने पर भी, यानी जो शरीर के परमाणु है उसमें छह प्रकार के, जैसे कर्म में भी सब वर्ण वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक वर्ण वाली लेशा के व्यवहार करने में कोई विरोध नहीं आता है। जैसे हम कहते ना, ये तो आदमी गोरा है, गोरा है क्यों कहा? अरे उसके बाल तो काले हैं ना, फिर भी मुख्यता से उसको गोरा कहेंगे। द्रव्य लेशा आलाप के आगे, यानी ये द्रव्य लेशा पर विवेचन चला भी उसके आगे भाव से, ये देवों की चल रही बात ना, पर्याप्तों की, तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, इन जनरल सबकी इसलिए तीन बताई, पर जिसकी जो है वो पूरे लाइफ टाइम वही चलती है। भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, छह सम्यक्त्व, क्योंकि क्षय के भी यहाँ से ले जा सकता है। हा? संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्य दृष्टि और अविरत सम्य दृष्टि, ये तीन गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, देखो अपर्याप्त है ना अभी, वैक्रिक मिश्र और कारमान, दो योग, स्त्री और पुरुष ये दो वेद, चारों कषायें, विभंग ज्ञान के बिना पांच ज्ञान, अपर्याप्त में विभंग ज्ञान नहीं होगा, तो कुमति कुशुत और तीन सम्यक ज्ञान, चौथे गुणस्थान वाले को। असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से कपोत और शुक्ल लेशाएं, भाव से छह लेशाएं, अपर्याप्त है, भवनत्रिक को भी लेना है, इसलिए भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, सम्यक मिथ्यात्व के बिना पांच सम्यक्त्व, संगिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इन जनरल उन्होंने बात की। अब एक एक को, यानी वो एक एक गुणस्थान को लेंगे, पर देवों के भेदों को लेंगे। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है? हाँ, हेलो, क्या प्रश्न है आपका? शोभा बेन, क्या कह रहे हैं आप? वो आपस में बोल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि देवों के सामान्य आलाप कहने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास। छो पर्याप्तिया छो अपर्याप्तिया, दसो प्राण सात प्राण, देखो मिथ्या दृष्टि है ना, तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लेना है। चारों संज्ञाएं देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय। अब चारों मनोयोग चारों वचन योग, वैखरिक का योग वैखरिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ग्यारह योग होते हैं। यह नपुसक वेद है ही नहीं, इसके बिना कहेंगे नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषायें, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षुर अचक्षु, ये दो दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व संगिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं मिथ्या दृष्टि देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप देने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छहो पर्याप्तिया दशो प्राण, चारों संज्ञाए देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग और वैकृत काय योग, ये नौ योग, नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाय, तीनों अज्ञान। देखो ये पर्याप्त जीव लिए हैं तो नियम से वो कुम्मति कुशोत्तर विभंग हो गए ही, और संयम इसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं उनको, या विभंग ज्ञान भी वो भव प्रत्यय उनके, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं, क्योंकि पर्याप्त तो मिथ्या दृष्टि लेने से भवनत्रिक भी आ गए उसके अंदर, भाव से तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब उन्हीं मिथ्या दृष्टि देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छहो अपर्याप्तिया सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय। योग में कौन लेंगे, कौन से लेंगे? हाँ, वैकृत मिश्र का योग और कारमान का योग, दो योग, नपुसक वेद के बिना दो वेद, चारों कषाएं, कुमति और कुश्रुत ये दो अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु ये दो दर्शन, द्रव्य से कपोत और शुक्ल लेशा, भाव से छो लेशा, अपर्याप्त में ले रहे भाव से, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, मिथ्यात्व संगीत, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी चौथे गुणस्थान वाले का अपर्याप्त आलाप लगाएंगे, अभी पढ़ना है। हाँ, टेबल टेबल 145 मिथ्या दृष्टि देवों के, क्या क्या कहाँ पर? अच्छा, द हुआ है, गति के नीचे द हुआ है, वो दे करना, ये नीचे का 145 नंबर का टेबल मिला, ग के नीचे द लिखा है, वो दे करना। हाँ, मैं आपको पूछ रही थी, हाँ, देव सामान्य अपर्याप्त बताना है, देव सामान्य चौथे गुणस्थान का अपर्याप्त अभी हमको पढ़ना है आगे जाके। हाँ,
गुणस्थान चौथा,
हाँ, गुणस्थान चौथा,
जीव समास संगी अपर्याप्त,
हाँ,
पर्याप्ति से अपर्याप्ति, प्राण सात, संज्ञा चारों, गति देव गति, पंचम सर,
पुरुष वेद, अभी खाली पुरुष वेद लेना है। हाँ, बरोबर,
कषाय चार,
ज्ञान
तीन,
ज्ञान
संयम,
हाँ, चक्षु अवधि दर्शन भी लेना ना, अवधि ज्ञान लिया ना आपने, अवधि
से
कपोत और शुक्ल लेशिया में तो जाएगा नहीं, तो भाव से तीन शुभ लेशा लेना, ये यहाँ पर अटकने का जो है भव्य है। सम्यक तो कौन कौन से हो गए, द्वितीय ऑप्शन अपेक्षा औपशमिक भी है, शायिक वाला जाता है, वेदक वाला भी जाता है मरकर, है ना, तीनों आहार अनाहार दोनों, ठीक है ना, ये हम स्वयं लगाएंगे तो थोड़ा तो अच्छा रहता है, आहारक अनाहारक दोनों, क्योंकि विग्रह गति में कारवाण का योग है तब अनाहारक वहां पर पहुंचते ही आहारक हो गया। समय चलो छोड़ते समय तो इन टाइम छोड़ेंगे हम जावानी के ज्ञान ते सूझे।